यीशु प्रिया प्रिय रूढ़ प्रतिरूढ़ मूर्तया प्रियश्च प्रतिरूढ़ मूर्तया आशा वह तित अबला तदात्मिका निवेदसु कृष्ण विहार विभ्रमा गति कृष्ण की गति को स्मरण करने लगी। कैसे गति? वो तो है ही है, गोपियां जब आई तो कृष्ण जरा दूर थे ना, गोपियों को देखकर जिस गति से ललित गति से गोपियों के तरफ में आ रहे हैं उसको स्मरण इस गति जो गोपियां कैसे किस गति से ललित दृष्टि से वो कृष्ण और कैसे आ रहे हैं ठुमक ठुमक करके आ रहे हैं, नृत्य करते हुए आ रहे हैं, मन उनको मनाने की नियत से आ रहे हैं, भुजाओं को रोध कर रहे हैं किस गति से, नहीं इधर में अन्न बिना हाथ जोड़ करके भी कर रहे हैं और जबरदस्ती नहीं लौटने दूंगा, दोनों एक साथ में इस सब को गति स्मित
गाने गाने की लीला है।
स्मित स्मित माने क्या है? कुछ लजा भी रहे हैं और कुछ मंद मंद मुस्का भी रहे हैं और कुछ इच्छाओं के जात प्रक्षण माने क्या? इच्छण इच्छण माने क्या?
अभिलाषा जात
देखा नहीं केवल नहीं अभिलाषा से इच्छण करना, इच्छा माने इच्छा करना, अभिलाषा युक्त इस प्रकार की भाषणादिशु और कैसे ललित भाव में उनके साथ में भाषण कर रहे हैं प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढ़ मूर्तया। वो जो प्रियाएं हैं किनकी प्रियाएं हैं? रमापते प्रिया। वो प्रियाएं कैसे हो गई? उनकी चिंता करते करते इन सब चीजों को प्रियस्य प्रतिरूढ़ मूर्तया प्रियस्य माने कृष्णस्य उनके प्रति जब जिस रूप में वो कृष्ण है कब स्वाधीन भक्तिका के लिए उनकी प्रतिरूढ़ मूर्तया माने उनकी मूर्ति जैसी हो गई विभावित होते 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 समस्त इंद्रियां मान बुद्धि चित्त अहंकार जो कुछ है
संपूर्ण कृष्णमय
सब एकदम कृष्ण में तन्मय हो गए। हम लोग कुछ कुछ अभी तन्मय हो रहे हैं कुछ थोड़ी सी सुन करके किंतु होने पर भी अभी दूध में दही जैसे डाल दी जाए ना ऐसे ही एक सेकेंड के लिए हो रहा फिर अलग अलग और उनका एकदम एक रस प्रतिरूढ़ मूर्ति कृष्ण ही हो गई कृष्ण की दूसरी मूर्ति बन गई प्रतिरूढ़ मूर्ति बन गई। कैसे? जैसे एक कांच फोका कांच कीड़ा बड़ा तेजी होता बन 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 करता हुआ उड़ जाता है और उसका पिछला भाग चमकता है और अपने से डबल टगल कीड़े को जो तेल पीने वाले लाल लाल होते हैं पुस्तकों में भी लगते हैं देखा है नालियों में जो रहते हैं बंगला में अरछोला कहते हैं हिंदी में नहीं उसको तेल पोका तेल पोवा होता है इधर हमारे नालियों में नीचे गंदे में पड़े हुए ठंडे में अभी मिलेंगे वहाँ नीचे उनको पकड़ लिया अब पकड़ करके अपने मट्टी का बनाया रहता है उनका घर उसमें उसको घुसेड़ दे और उसके पास ही जा करके बन 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 करने लगते हैं और थोड़ी देर में वो इतना भयग्रस्त हो जाता है भय भी कुछ दिनों के दो एक दिन के बाद ही में उसके स्वर से भयभीत होकर के धीरे 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 उसका स्वरूप बदल करके वो भी वैसा ही एक दूसरा वो कीड़ा बन जाता है उसी के समान तेज चमकदार। तो ये कैसे हुआ? भय के द्वारा तन्मय होकर के यदि तन्मय होकर के कीड़ा भी वैसा हो सकता है तो क्यों नहीं भगवान में तन्मय हुआ जा सकता है। इसी तन्मयता का नाम ही मुक्ति है। कौन सही जो मुक्ति भाई मरते समय जो जैसे चिंतन करेगा जैसा ही चिंतन करेगा जैसे कि भक्त जी ने मृग का चिंतन किया मरते समय में तो वो मृग होकर के आ गए। तो कोई कृष्ण के नारायण रूप का चिंतन करेगा तो वो क्या होगा? नारायण जैसा ही चतुर्भुज हो जाएगा, नारायण नहीं होगा। वो भी मिलकर के एक नहीं हुआ, एक दूसरा कीड़ा और हो गया। इसी को सारूप्य मुक्ति, उसमें मिलकर के नहीं हुआ। ऐसे ही यदि कृष्ण की चिंता करने वाले लोग हैं तो कैसा होगा उनका परिकरत्व? इसीलिए कहा गया अकेले कृष्ण की चिंता मत करो, मत करो। ऐसा क्या करो? कृष्ण को भी स्मरण करो और उनके उनके जन को भी। कृष्ण के जन को माने सखा हैं, माता पिता हैं, गोपियां हैं, ये सब का। अब विशेष करके उन्हीं का चिंतन करो, उन्हीं की सेवा का। और उन लोगों ने जिस रूप में कृष्ण का स्मरण किया बस उतना है, वैसा स्मरण करो, पृथक रूप में स्वतंत्र रूप में मत करो। तो होगा क्या, तुम लोगों का गोपियों में या सख भाव में या उनके जो आश्रय हैं प्रेम के, उनकी चिंता करते 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 कृष्ण का परिकर का शरीर मिलेगा। यही गोपी भाव है, यही कृष्ण के परिकर होने का ये भाव। यदि दिन रात चिंतन करते करते मरते समय भी वैसा ही चिंतन है और दूसरा कोई चिंतन नहीं है, इसलिए कृष्ण का सारूप्य नहीं होकर के उन गोपियों का सारूप्य गोपी भाव किया। और यदि कृष्ण का चिंतन किया तो वो हो गया कृष्ण सायुज्य, कृष्ण का वो रूप, कृष्ण का सारूप्य, कृष्ण का सामीप्य इत्यादि।
और परिकर का चिंतन करते करते परिकर सायुज्य प्राप्त हो गया।
परिकर माने परिकर जैसा, जैसे वो कीड़ा नहीं हो करके कीड़ा जैसा वो शाही बन गया, उन्हीं के भाव युक्त हो करके ये मृग बने गए। किंतु वही मृग बन गए जो कि मृग था, वो उसमें मिलकर के वही बन गए कि अलग से बने? इनकी स्वतंत्रता रही, विचरण करते रहे, अपनी इच्छा से जाकर के वहीं पर जा करते रहे जहाँ पर कि वो वहाँ पर जिस आश्रम में रहते थे, घास भी खाते थे और वहीं पर बैठे हुए सुनते थे कथा और गंगा में जाकर के पानी पी लेते, कुछ दिन के बाद में शरीर छोड़ फिर जाकर के अपनी स्थिति में आ गए। ऐसे परिकरों का चिंतन उस रूप में नहीं, उनके भाव का चिंतन करते 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 उन्हीं का स्वरूप माने उन्हीं जैसा होगा। यह प्रतिरूढ़ मूर्तयः आसौ, मैं वही हूं, ये भाव चिंतन करते 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 हो, मैं वही हूं, मैं कृष्ण ही हूं। किस रूप में? दो रूपों में। निवेदसु कृष्ण विहार विभ्रमा, एक दूसरे से कह रहे ये कृष्ण है। और जब अधिक घोर जिनका कट चिंतन हुआ वो कहा जब मैं ही कृष्ण हूं, मुख से नहीं कहा जब मैं कृष्ण हूं, ऐसे भाव को प्रकाश किया जिसे मालूम पड़ा जैसे ये कृष्ण है। जैसे एक ने एक को पकड़ लिया, एक दूसरे को, और वो समझ रहे मैं कृष्ण हूं, या तो उसको पकड़ करके गिरा दिया और उसका स्तन पकड़ लिया और ये देख ला रही है जो मैं इसका दूध चूस रही हूं और इसका प्राण तक पी गई। दूसरी जिसको पकड़ा है वो क्या समझ रही है? जिसको पकड़ रखा है वो क्या समझती है? यही पर विशेष बात है। वो सोचती है कि मैं पुतना हूं कि कृष्ण हूं, क्या समझती है?
पुतना नहीं, पुतना भी नहीं है, कृष्ण भी नहीं है।
क्या है?
योग माया उनको भाव को पुष्टि के लिए ऐसे मुक्ति बना के उसका अंदर दे दिया।
योग माया ने, यही पर समझो, योग माया ने उनकी भाव के की पुष्टि करने के लिए उसकी लीला के अनुकूल में वैसे ही एक गोपी की मूर्ति कर दी। और उसमें ये भाव नहीं है कि मैं कृष्ण हूँ या
पुतना, कुछ भाव नहीं इसमें,
प्रतिकूल भाव है। इसमें मैं कृष्ण हूँ, पुतना को पकड़ लिया, उसको मैं गिरा रहा। ऐसे किसी ने कहा देखो मैं कैसे चल रही हूँ,
ललित गति का देखो,
ललित गति, कृष्ण जैसे चल रहे हैं वैसे चल रही है, वैसे मुस्कुरा रही है, वैसे ही बंसी बजा रही है, वैसे अपने कपड़ों को उड़ा करके और कहा कि गोवर्धन देखो धारण कर रही है। कृष्ण की जितनी भी गतियां हैं, भाव हैं, सबको ठीक वैसे कर, ये क्यों हुआ? इंद्रियां उनकी जितनी है, मन बुद्धि अहंकार चित्त और ये सब इंद्रियां, सब उसमें, इसलिए कहते हैं इति उन्मत्तक वचो गोप्य कृष्ण अन्वेषण का तरह लीला भगवतास्तास्ता ही अनुचक्रुश तदात्मक। इस प्रकार से तदात्मिक होकर, तदात्म होकर के, ये दो प्रकार का, ऐसा दो प्रकार का तदात्म है। जब तदात्म का ज्वर अधिक नहीं है, अभी प्रवेश कर रहा है तदात्म, प्रथम अवस्था, और एक है पहली अवस्था में। क्या है पहली अवस्था में? चिंता कर रही हैं तो कृष्ण के लिए खोज रही है, मनोरम आलाप इत्यादि का चिंतन कर रही है, किंतु उतना भी बुखार नहीं चढ़ा, तदात्म उतना नहीं हुआ, इसलिए पेड़ों से पौधों से पूछ रही है, हमारे कृष्ण इधर से गए, तुलसी आज बड़ी प्रसन्न हो रही हो, भौरे तुम्हारे ऊपर में गुंजार कर रहे हैं, बड़ी खुश हो, क्यों खुश हो? हाँ, इधर से हमारे प्रियतम गए, और जब पूछा तब कुछ देर के बाद में उत्तर नहीं मिला तो ये बतलाएगी नहीं, इसको प्यार करके गए और कह दिए हैं, खबरदार उनको मत बतलाना, अब इनसे नहीं पूछेंगे, हम तो विजातीय लोगों से पूछेंगे, विजातीय माने पुरुषों से पूछेंगे। तब उन्होंने अशोक पीपल अश्वत्थ और बड़े बड़े लंबे चौड़े वृक्षों से पूछा, आप लोग बड़े हरे भरे हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न जर आ रहे हैं, कैसे? फूल खिले हुए, इसलिए प्रसन्न जी आ रहे हैं, क्या इधर से हम लोगों का चित्त चोरी करके कृष्ण इधर से गए हैं? हमारे प्रियतम तन्मय होकर वृक्षों ने उत्तर नहीं दिया, फिर उसका समाधान अपने कर लिया, ये पुरुष जाति कृष्ण का पक्षपाती, ये नहीं कहेगा और आगे बढ़ेगा। देखा उन्होंने लताएं हैं फूल से भरी हुई ऊपर से, किंतु नीचे फूल नहीं है, फूल कहाँ है? ऊपर। भावना क्या किया? नीचे का फूल तोड़ ले गए हैं, किस लिए? उसका माला गंतव्य, जहां तक होगा वहां तक, और ऊपर वाला उसे, तुम हंस रही हो, बड़ी खुश हो, क्या बात है? इधर से हमारे चित्त को हरण करके जो ले गए श्याम, इधर से गए हैं तो वहां से ही रही हैं, इनके बातों पर ध्यान नहीं दिया, कहिए हमारे बात पर ध्यान नहीं दे रही हैं, बड़ी खुश हो रही हैं, ये हमको देखती हैं कि कुछ देखती ही नहीं है, ये क्या है? अभी तदात्मिक बहुत अधिक नहीं हुआ, ये अभी बढ़ रहा है, और होते होते क्या हुआ, अब एकदम जब पूरी उन्मत्त हो गई, अन्वेषण करते 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 तब लीला में आ गई, लीला अनुभव, एकदम लीला अनुभव आया, और उसमें वो कृष्ण में तन्मय होकर के कृष्ण ही जैसी हो गई।
तो ये भावनात्मक वाक्य जो है, जैसे फूल तोड़ करके ले, तो ये सत्य है या कल्पना है?
भागवत का कोई भी बात
उनके दृष्टि में जब उन्होंने देखा है तो उनके वाक्यों को, तो ये निश्चित रूप में ये फूल ले गए हैं, कृष्ण तो ले ही गए, इसको सत्य ही
मानना, असत्य ये प्रश्न है।
इनके इनके जो यहाँ पर जो भावना हो रही है, तो कोई भावना में ये तो गलत नहीं है कि यार ऐसी भावना कह दी परंतु काम नहीं है,
मिला नहीं है, वो सब कुछ सत्य है। गोपियों ने जो कुछ कहा है उसको उद्धव जी और सर्टिफाई करके के कह रहे हैं, इसलिए कभी भी यह असत्य नहीं होगा। तो लीला भागवता तास्ता ही अनुचक्रुस तदात्मिक, उन उन लीलाओं को जो कृष्ण ने किया है, अगासुर को मारना, बकासुर को मारना और सब लीलाएं, गोवर्धन को उदाहरण करना, गोपियों के साथ में प्रेमालाप इत्यादि, ठीक हो करके तदात्मिका, कृष्ण की आत्मा ही तब से तदात्मिका, कृष्ण जैसे ही एकदम होकर के और लीलाओं का ये सब अनुकरण करने लग गए, उसी को कह रहे हैं ता मन मनस का, यह है मन मनस का अक्षिप्त चित्ता तदात्मा मत प्राण, गोपियों का मैं प्राण हूं, अभी इस समय मथुरा में हूं। गोपियां कभी की मर जाती यदि उनका प्राण उनके साथ में होता, वो विरह को सहने में असमर्थ थी। चूंकि मैं प्राण अभी मथुरा में बैठा हुआ छिप करके, इसलिए उनका प्राण अभी निकल करके नहीं चला गया, या वो मर नहीं गई, जल करके वो खत्म नहीं हो, इसलिए मैं यहां पर हूं। मत प्राण, मैं ही उनका प्राण। अथवा मत प्राणा, इसका अर्थ यह भी होगा कि हमारी वो प्राण स्वरूपा है, मैंने अपने प्राण को जैसे बचा रखा है उनको भी बचा रखा है, इसलिए वो मरती नहीं, ऐसा भी अर्थ किया जाएगा। क्यों ऐसा अर्थ किया जाएगा? साधुओं का हृदय मैं हूं, मैं उनका हृदय हूं, वो हमारे हृदय, इस तरह से। जो लोग अपना प्राण कृष्ण को समर्पण कर देते हैं, कृष्ण भी वैसे ही कर देते हैं। मदर्थे तक्त दैह का, उन्होंने दैहिक जितने भी कर्तव्य हैं वो सब कुछ मेरे लिए छोड़ दिया है, और ग्रहण जो किया है अखिलार्थ चेष्टा जितनी की है हमारे लिए, सब चेष्टा ही हमारे लिए करते, कोई भी अपने लिए चेष्टा की नहीं। लोक धर्म, परलोक धर्म, यह लोक और
परलोक,
परलोक और भी क्या शब्द से, सब को छोड़ दिया। ये सब चीजों को छोड़ दिया, इसका नाम है भजन। भजन ऐसा भजन करो देखो जो कृष्ण दूर नहीं है, इसको कर ऐसा तन में जिस समय होंगे कृष्ण दर्शन देने के लिए आकुल हो जाएंगे, तो अभी इनके लिए भी कितना, अभी देखो जो अभी अभी दर्शन नहीं दे रहे हैं, जब उस अवस्था में, तो इस अवस्था में क्या, हम चाहते हैं आज ही चुटकी बजाएं और भगवान का दर्शन हो जाए, हरिनाम करके आज देखते हैं कि आज हरिनाम हमने किया, देखो जो भगवान मिले कि नहीं, कुछ हुआ कि नहीं। फिर दो दिन के बाद में उत्साह ढीला हो जाता है, महाराज जी मैं कल तक तो बड़े उत्साह से हरिनाम करता था, 50,000 कर रहा था, 1,00,000 नाम करता था, और अब हमारा मन ही नहीं लगता, तो मन लगेगा कैसे? उत्साहमयी खंतरला अभी प्रभु। भगवान ऐसे नहीं है जो जत रोटी बनाई और मुख में दे दिया, मक्खन लगा लिया, खा लिया। जब गोपियों की स्थिति ऐसी है तो हमारी कैसी स्थिति है? दोनों को मिलान करके भजन करो अभी, किंतु कृष्ण अभी से ही हमारा सब ध्यान रखें, ये बात ठीक है। जितना हम भजन करेंगे उसी के अनुरूप में वो। सनातन गोस्वामी जी बतला रहे हैं कि कब कितना बजा, तब कल सनातन गोस्वामी की इसकी पट्टी का जो विशेष है वो बतलाऊंगा, आज यहीं तक है। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो कामादितरंग मध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपद्ये। नमस्ते गौरचन्द्रायराधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय यं प्राव्रजन् तमनुपेतमपेतकृत्यं श्वेताय मां विरह प्रातर्यायुधा पुत्रेति सम्यक्तया कर्तो तं सर्वभूत। तुम भी नहीं गया आदेश को पालन करने के लिए ना, ये सिर रखने चाहिए, जो ऐसा नहीं कर सकता वो भजन नहीं कर सकता। यदि यही सब नहीं होता तो क्या भजन करेगा? कोई भी आदेश पालन करने के लिए, आराम करने के लिए तो मत नहीं, घर कर नहीं छोड़ा गया। बहुत कठोर चीज ये, क्या सुन करके होगा तन मनस का, फिर घर के सुन करके क्या होगा? अभी साधारण परिश्रम से डरते हैं, तो गुरु भी खा तो देगा किंतु मिलेगा नहीं, उनको सामर्थ्य हो गया ना। परशुराम जी ने कहा ये सब ब्रह्म विद्या सब अस्त्र शस्त्र दे दिया और फिर अंत में कर दिया क्या, जब देखा कोई भी काम नहीं आएगा जाओ भूल जाएगा, स्विच उनके हाथ में है भाई, ऐसा मत समझ। देखा गया कितना कठोर कठोर लोग आदेश देते हैं, हम लोग इस स्तर पर आए हैं ऐसे ही नहीं, प्राण हथेली पर लेकर के प्रचार करके गुरु का आदेश पालन करके प्राप्त, गुरु वैष्णव का आदेश ही नहीं पालन करेंगे क्या करें। गुरु का आनंद कैसे चुकता है, यदि गुरु नहीं रहते तो हम लोग इस भजन में आते, कितना कठोर परिश्रम करके कितना त्याग करके हम लोगों का पालन पोषण किया, उनका ऋण उसी तरह से जैसा वो चाहते हैं वैसे करेंगे तब तो अपने आप आ जाएगी सब कुछ। अरे सहज काम नहीं है, रुपये पैसे से ये ऋण नहीं चुकता, या और दूसरे की चीज़। इसलिए अवधारणा की शक्ति नहीं होती, इसलिए प्रारंभ से साधन करना उचित है। हम लोग सबसे पहले जब हम कोई भी कार्य आरंभ करते हैं तो हम क्या वंदना करते हैं, किस चीज की वंदना करते हैं सबसे पहले, किसी ने भी आज तक प्रार्थना की, कृष्णदास कविराज गोस्वामी वंदे हम,
वंदे
फिर क्या कहते हैं वंदे हम
श्री गुरु,
अज्ञान तिमिरांधकर्ष, यहां भी देखो वहीं से आरंभ हुआ, ये परमार्थ राज्य ऐसा है। ये तो बहुत ऊपर की चीज है, बहुत ऊपर। हम लोगों ने सनातन गोस्वामी का ये आरम्भ किया, इसमें उनकी टीका को हम लोग संक्षेप में बतलाएं। उन्होंने कहा था मन मनस का मत प्राणा मत अर्थे तैय का ये तख्त लोक धर्मांश मदर्थिता विभर्म में हम, उन्होंने मन को हमको दे दिया, अपना प्राण भी हमको दे दिया, मैं उनका प्राण हूं और हमारे लिए उन्होंने सब कुछ देह और दैहिक सब कुछ प्रत्याग कर दिया, धर्म अधर्म सब मेरे लिए। ये तख्त लोक धर्मांश मदर्थ, जिन्होंने मेरे लिए लोग लौकिक धर्म पारलौकिक धर्म सब कुछ मेरे लिए उनको मैं पालन पोषण करता, वो इसीलिए जीवित है कि मैं पालन पोषण करता हूँ, उनके प्राण मेरे पास में हैं इसलिए वो मरने रहने चाहो तो वो मर जाती। उन्होंने मेरे लिए ही पहले ही पति पुत्र गृह समस्त को उन्होंने छोड़ दिया है, तप्त देह दैहिक का देह और दैहिक सब कुछ छोड़ दिया है। देह मैंने ये शरीर, खाना पीना आराम करना जो कुछ है सब हमारे लिए, और दैहिक भी जितना है वो सब मेरे लिए। ये एक श्लोक भी यदि किसी के जीवन में उसका आभास भी हो जाए तो उसी से ही सब कुछ लाभ हो सकता है। एक उपदेश, अलग उपदेश की जरूरत है। ये तो क्या बात, अनेक निम्न भूमिका की गीता की बातें हैं, उसको एक को भी कोई ले ले उसी से ही सब कुछ समझ। गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, किंतु उसका एक का विचार नहीं लेते। कोई भी यह श्लोक ले लो, सबका आदर सार वही चीज, सबका एक ही सार। मदर्थ है मेरे लिए, मेरे लिए ही वो यहाँ नहीं आती मथुरा। कोई यदि पूछे अच्छा ठीक है वो विरह में जल रही हैं, मर रही हैं, बड़ी दुखी हैं, तो आप उनको अपने पास में क्यों नहीं बुला लेते, मथुरा में बुला लेते? कोई जगह की तो कमी नहीं, द्वारका में चले गए तो द्वारका में जगह की कमी थी, 16,160 महर्षियां रह रही हैं, 16,108 तो भी कितनी कोरी कोटी बन सकती थी, उनके लिए कोई कमी नहीं है, सब कुछ हो सकता है, तो क्यों नहीं बुलाया? उसके लिए कह रहे हैं मेरे लिए ही नहीं आती हैं। क्यों? मैं आते समय में उनको कहा था कि मैं आयास से मैं आ रहा हूँ, दो दिन में ही कल परसों में लौटाऊंगा, तुम लोग चिंता मत करो। इसलिए अपने प्राणों को बड़ी कठिनता से वो धारण कर रहे हैं, आएंगे जरूर, इतना उनको विश्वास है, इसलिए वो अभी जीवित रह रही हैं। आप लोगों ने सुना है एक जहाज था, बहुत बड़ा भारी जहाज, उसमें एक कैप्टन था और उस पर बहुत से लोग सवार थे। उसमें आग लग गई, आग में इंजन में ही, और वो डूब रहा है, पानी भर रहा है छिद्रों से, अब कुछ देर में ही वो डूब जाएगा, बहुत विशाल लंबा चौड़ा। सब लोग भाग रहे हैं, उसमें निकल रहे हैं, जिसको जैसे मिल रहा है, कोई बोट आ रही है, कुछ आ रहा है, वो सब निकल करते जा रहे हैं, किंतु एक लड़का नहीं निकला,
डेक पर खड़ा
है,
डेक पर ही खड़ा रहा,
बस वो खड़ा रहा, यदि कैप्टन आदेश देगा तो मैं निकलूंगा, और अंत तक नहीं निकला। कैप्टन शायद वो निकल करके भाग गया, या वो ही जो मर गया ना क्या हो गया, उसी में रह गया ना, कैप्टन नहीं निकला, वो नहीं निकलेगा, उसका तो उसमें आसक्ति और मोह है ना, नहीं निकला, और वो आदेश के लिए बस अंत तक डेक पर खड़ा रह गया, नहीं निकला। ऐसा आदेश कोई पालन कर सके तो परमार्थ राज्य में घुसे, और नहीं तो उसके लिए संभव नहीं है परमार्थ। इसलिए हमारा आकर देखो, गोपियां ने क्या किया, मर रही हैं, सब प्रकार से कष्ट भोग रही हैं, किंतु मैं आऊंगा, कृष्ण ने कहा था नहीं कभी जैसे तुम लोग आ जाओ मथुरा, इसलिए कभी नहीं। इसलिए आज भी अत्यंत कष्ट रूप से किसी प्रकार से अति कृष्ण न धारयन्ति प्राणा, अपने कष्ट से प्राणों को धारण कर रहे हैं। इसलिए यदि कहो अपने पतियों के साथ में किस लिए है, इसके दो उत्तर, एक तो जो गोपियां वैसी हैं वो नित्य सिद्धा, वो कभी घर में लौटी ही नहीं, कभी नहीं लौटी, जोग माया ने उनके बदले में दूसरी प्रतिरूढ़ मूर्तियों को बना दिया, हम मान ले के घर में भी हैं जो वो किस लिए है? उसके लिए बतला रहे हैं, मदद थे मेरे लिए ही वो घर में है। यदि हमारे घर में रहने से वो प्रसन्न है तो घर में ही रहेंगे, उनकी प्रसन्नता की आवश्यकता है। हम लोगों के लिए भी ऐसे ही, जिनके चरणों में हम लोगों ने आत्मसमर्पण किया है उनके चरणों में भी ऐसे ही रहेंगे, मनमानी नहीं। कभी इच्छा हो तो चल पड़े, कहीं गए, कहीं आए, कहीं कुछ किया, अपने मन से कर रहे हैं तो अपने मन से करो, तो अपने मन से भगवान भी दे देंगे तुमको। इसलिए पूर्ण अनुगत होना चाहिए। देखो जैसे इनका, यदि कृष्ण चाहते हैं तो घर में रहे, कृष्ण चाहते हैं कोई भी चीज बस मेरे लिए, भक्ति ऐसे अनुगत्यमय चीज है, उसमें अपनी स्वतंत्रता को संपूर्ण रूप से बेच देना पड़ता है तब वो पूर्ण चीज आएगी। अन्य तो जितना तुमने दिया, जे जथानुमान प्रपद्यन्ते ताम, एक पैसा देगा तो एक पैसा तुमको देंगे, दुर्योधन ने जितना दिया तो उसको भी उतना ही दिया। कहा जी हमारा इसमें दोष नहीं, मैं तो कठपुतली हूँ, आप न चाहने वाले हैं, आप जैसे नियुक्त करते हैं युद्ध के लिए, मैं युद्ध कर रहा हूँ, मैं ये राज्य नहीं पांडवों को दे रहा हूँ, पांच गांव भी क्या एक सुई का नोक भी ये आपकी प्रेरणा से नहीं दे रहा हूँ। कहा जी ठीक है, तो मेरी प्रेरणा से भी जो इसका फल होगा उसको भी तुम सह लेना। तो उसका फल क्या हुआ? पांच सुई का नोक भी उसको नहीं मिला। इसके लिए वो जैसे हम लोग चतुर हैं, हमसे वो चतुर अधिक है भगवान। इसलिए गोपियों का घर में रहना, बाहर में रहना, कोई भी काम करना, सब कृष्ण के लिए करते हैं। ऐसा धारण देख लो, द्रौपदी गोपियों को तो बात छोड़ो, उनके लिए सब समय कृष्ण चिंतित रहते हैं, चौबीसों घंटे उन्होंने संपूर्ण रूप से कृष्ण के चरणों में अपने को समर्पण कर दिया है। इस समय कृष्ण ने कहा जे देखो कल एक जगह चलनी बात है, अभी रात में चलनी है, ठीक है हम चलेंगे। किस लिए चलना है उद्देश्य तो बतला दीजिए, द्रौपदी को चिंता उतनी नहीं है। आज ही कल ही के युद्ध में भीष्म पितामह जी मारेंगे अर्जुन को, मारना है पांचों पांडवों को अवध करेंगे, ये उन्होंने प्रतिज्ञा कर दी। कृष्ण कैसे रक्षा करेंगे इसके लिए बड़े चिंतित हो गए, और मारने से भी अधिक ये वो तो आजन्म ब्रह्मचारी हैं, भगवत भक्त हैं, ज्ञानी भक्त हैं, इसलिए किसी को कुछ कह देंगे तो वो जरूर हो जाएगा। उन्होंने आज ही बुलाया है दुर्योधन की पत्नी को, सौभाग्यति भव, सौभाग्यति भव माने क्या, तुम पति तुम्हारा जीवित रहेगा मरेगा नहीं, तो इसका मतलब है जो उसकी जीत हो जाएगी, इसलिए कल आने ना पाए आज ही कुछ कर लेना है, बस रात में द्रौपदी को लेकर के चले। भीषण वर्षा है, खूब वर्षा हो रही है, ठिठुर रहे हैं लोग ठंड में। अब भीष्म पितामह ने बुलाया है दुर्योधन की पत्नी को, भानुमती को, जो तुम आज रात में आ जाना आधी रात के समय में, और समय तुमको उस समय मैं ध्यानस्थ होकर के भगवत चिंतन करूंगा, और उस समय जाओ तुम्हारा पति कभी नहीं मरे, तो भाग कर। खूब जोर से वर्षा होने लगी, दुर्योधन ने कहा जाने की जरूरत नहीं है आज नहीं कल, और तो भीष्म पितामह तो अपने हैं, तो उसने कहा जो ठीक है तो अब कल ही चलेंगे, आज रहने दो। आकृष्ण ने इसी बीच में द्रौपदी को अपने रथ पर बैठा करके खुद सारथी बन करके ले गए वर्षा में, कहना कुछ बोलना मत, घूंघट निकाल करके रखना यहाँ तक जो पहचान न सके, वो समझेंगे जैसे वो भानुमती आ गई, और तुम उनको प्रणाम करके हाथ जोड़ करके इस तरह से बोलना मत कुछ, वो अपने आप आशीर्वाद दें तो आप फिर बोलो। जाकर के रथ खड़ा कर दिया और कहा कि मैं यहीं पर बाहर हूँ, तुम जाओ भीतर। और भीतर वो चली गई द्रौपदी। वो ध्यानस्थ थे इसके बाद में प्रतीक्षा कर रहे थे, जरूर आएगी भानुमति। और बड़े चिंतित थे कि मैं क्या करूं, बर देना नहीं चाहिए किंतु मैं फेर में पड़ करके स्नेह में दूषित अन्न खाने के वजह से ऐसा कर रहा हूं, हमको नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा सोच भी रहे। इतने में द्रौपदी जी वहां पर गई, देकर के आकर के बैठ गई और हाथ जोड़ करके घूंघट निकाल दी। कहे बेटी आ गई, बस जाओ। क्या
अखंड सौभाग्यवती,
अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती, तुम्हारा कभी पति नहीं मरे, अखंड। बस द्रौपदी जी अपना ये घूंघट उतार करके और पितामह जी के चरणों में गिर गई। आपने ऐसा आशीर्वाद दिया, मैं अब कल आप कैसे मारेंगे उनको, मैं तो अखंड सौभाग्यवती हो गई ना, और अपने हाथों से उस अपनी इस आशीर्वाद को मिथ्या करेंगे। बस हंसने लगे, किसके साथ में आई, अकेले तो आ नहीं सकती, किसके साथ में आई,
किसने बताया,
तुम अकेले नहीं आ सकती, कोई साथ में है। उन्होंने कहा दरवाजे पर खड़े हैं, जा करके देखा जो प्रभु खड़े हैं, उनके चरणों में गिर गए। ये प्रभु आप धन्य, मेरी इच्छा तो नहीं थी जो उसको बर देता, उसको भानुमति को, किंतु मैं बाध्य हो रहा था, आपने मुझे भी बचा लिया, द्रौपदी को भी बचा लिया, पांडवों को भी बचा लिया, आप धन्य। बस वो बर लेकर के चली आई। चिंता किसको है, शरणागत जनों को की के लिए, शरणागति देने वालों को ये चिंता रहती है। हम लोग समझते हैं कि हम शरणागत होंगे, हमारी रक्षा कौन करेगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। ये पहले वैष्णवों के साथ में सीखना पड़ेगा और तब फिर भगवान में देना पड़ेगा। अभी रिहर्सल चल रहा है, अभी हम लोगों का ये साधन का रिहर्सल है। साधने भावी में जहां सिद्धि ते पाई भी, जो साधन में हम अभी कर रहे हैं ना, सिद्धि में वैसा ही। अभी उनके प्रति हम आत्मसमर्पण जो करते हैं, यही आत्मसमर्पण भी किस गुरु लेकर के कृष्ण में करते हैं, किंतु करेंगे कब, जब हमारी भावना को देखेंगे तब तो। इसलिए पहले ही बदला धर्म प्रोज्जित कई तो वो अत्र, भागवत धर्म में कपटता नहीं है। कपटता क्या है, अपनी किसी प्रकार की लाभ, अपना किसी प्रकार का कोई भी चीज सुख ये देखना ही, इसलिए मुक्ति इत्यादि तक सब जितनी चीजें हैं ये सब कपटता है। सब कुछ हम करेंगे कृष्ण के लिए, दुख भी सुख ही, इसलिए ये गोपियां ऐसी किसके लिए घर में रहती हैं, आभूषण किस लिए पहनती, यदि अर्थ लगा दिया और लगा दिया जाए इसमें ना, अत्यक्त दैह का और यदि लग गया उसमें व्याकरण के अनुसार में वो भी लग सकता है, तो उन्होंने घर को जो देह और दही को नहीं छोड़ा, किस लिए श्रृंगार करती हैं, भोजन करती हैं, चलती हैं फिरती हैं, घर में रसोई बनाती हैं, पतियों के साथ में बच्चों के साथ में रहती हैं, किस लिए, मदर्थे मेरे लिए, मैं तो कभी भी नहीं रह सकती थी। और तक तो लोक धर्मांश, अभी लोक को और धर्म को, लौकिक धर्म पारलौकिक धर्म, यह लोक का धर्म जितना है सबको जलांजलि दे, किस लिए, केवल एक कृष्ण के लिए। यदि हम लोग भी इसको पालन करें, एक कृष्ण के लिए ही हम चलते हैं फिरते हैं उठते हैं बैठते हैं, जो कुछ भी क्रिया करते हैं, सब मान अपमान जो कुछ है सब उनके लिए, बस सारी समस्याएं मिट जाएं। लेकिन तभी हो नहीं पाता। इसलिए ये कह रहे हैं सनातन गोस्वामी जी, जो कुछ भी हमारे पास में आती नहीं है, इसीलिए मथुरा से वृंदावन कितना दूर है, कितनी दूर है, वृंदावन यही पास से ही है, दो अंगुल का फैसला, उधर में वृंदावन इधर में मथुरा, गोपियां नहीं आ सकती, खूब आ सकती थी किंतु आई क्यों नहीं, कृष्ण ने कभी नहीं कहा जे तुम आओ, इसलिए कृष्ण ऐसा कह नहीं सकते जे तुम आ जाओ। इसलिए उन्होंने कहा था जे आयास्य मैं आ रहा हूं, इसीलिए। और उद्धव कभी कहा देखो तुमको संदेश देता हूं, इतने बातें कहने के लिए तुम अपने तरफ से कोई चेष्टा मत करना समझाने बुझाने के लिए, तुम्हारी दलील वहां पर नहीं चलेगी, तुम्हारा तर्क युक्ति विचार धारा कुछ भी वहां नहीं चलेगा। जहां जहां उद्धव जी ने अपने मन से कोई बात कही, गोपियां ने तिनके की भांति उड़ा दिया, और उद्धव जी देख करके दंग हो रहे हैं। कृष्ण के वाक्यों का जो अर्थ उन्होंने लगाया, उस अर्थ से वो कुछ कह रहे हैं ना, तब तो वो सब कुछ को दूर कर देती हैं, और जो उसका यथार्थ अर्थ जो स्वयं उपलब्धि करती हैं, उससे कृष्ण के प्रति उनकी श्रद्धा और बढ़ जाती है। एक ही के तीन अर्थ, एक ही शब्द के उस पोटेंसी के ऊपर में सब कुछ निर्भर रहता है। जैसे तुम कहाँ गया था साधारण, मैं बम्बे गया था, दिल्ली गया था, कलकत्ता गया था। तुम कहाँ गए थे, दूसरा अर्थ हो गया। तुम कहाँ गया था, एक साधारण टोन में ही सब छिपा हुआ। जब ये कहा जैसे तुम कहाँ गए थे, तो इसका मतलब ये तुम मत जाना, जहां भी गया था ये पूछ नहीं रहा तुम क्यों गया, और तुम कहाँ गए थे मैं जानता हूं ये कहाँ गया था, किंतु अच्छी जगह में तुम नहीं गया था ये भी जानता हूं, और तुम कहाँ गया था ये साधारण रूप में पूछ रहे। इसी तरह से कृष्ण ने जो कुछ कहा संदेश, उसके तीन अर्थ थे। उद्धव जी अपने मन से कहा नंद बाबा को, जगत में सबसे अधिक महाभाग कोई यदि है, मां सौभाग्यवान तो आप हैं और यशोदा जी। वो अपने मन से, ये कृष्ण का संदेश नहीं था ये कहना, किंतु अपने मन से लगाया, और लगाया किस लिए, समस्त शास्त्र जितने हैं ऐसा ही कहते हैं, भगवान के लिए जिनके आंखों में आंसू आ जाए भगवान के लिए तड़पे, जो दिन रात भगवान की ही चर्चा करते हैं उसी में तन में रहते हैं, उन्हीं का जीवन जथा महाभाग, वो लोग महाभाग। यहां देखा जी ऐसा किसी का विश्व में नहीं देखा, जब से आए तब कृष्ण ही की चर्चा, कृष्ण का ही चिंतन, कृष्ण के लिए रो रहे हैं। तो मैं नहीं कहूं तो क्या कहूं। आनंद बाबा ने जब उसका उत्तर दिया तो कहते हैं मैंने क्यों कहा ये, ऐसा क्यों कहा, मेरे तू तो बड़ा मूर्ख है, तू अज्ञ है, बालक है, अभी दूत, अभी अकल का दांत नहीं आया तुमने। अच्छा ये तो विचार करो, कृष्ण के साथ में तू था, हमारे जैसा दुर्भाग आदमी कोई जगत में है, कृष्ण जैसा लाल, और वो भी मुझे छोड़ करके चला गया, बतलाओ तो ऐसा दुर्भागा जगत में कोई होगा, और मैं अभी मर नहीं गया, अभी बतलाओ तो अभी जीवित हूं यह कहने के लिए कि हमारा लाल चला गया, बस डकर डकर करके रोने याद आई। कह रहे हैं जो उद्धव मैं उसको भूल जाने के लिए घर से निकलता हूं, घर में उसके देखता हूं, प्रत्येक घर में उसके चरण चिन्ह, उसकी छोटी सी बांसुरिया, उसके खिलौने, ये इस घर में उसने जन्म लिया, इस घर में वो जाता था, इस घर में उसकी मैया ने उसको बांधा, सब घर उसकी ही बातें चर्चा करते हैं, और जब मैं बाहर जाता हूँ भूलने के लिए इसको, यमुना के तट पर जाता हूँ
तो जमुना जी आकुल व्याकुल होकर के रोती हैं, कहे मैं भी इस वृंदावन से चली। रोती हैं किस लिए? सब कृष्ण की लीलाएं पर, सब ही पर। ऐसा कोई वृक्ष नहीं जिसके नीचे कृष्ण की लीलाएं नहीं हुई, ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जो कृष्ण के लिए नहीं तड़प, कोई पशु पक्षी कीट पतंग कोई भी। वहां से जाता हूं जैसे यहां पर नहीं, गोवर्धन में जाते हैं तो गोवर्धन फुकवा फुकवा करके रोता है, कहता है जैसे यहाँ पर तक कृष्ण का सब चीज। समस्त ब्रजमंडल में ऐसा कोई भी स्थान नहीं जो कृष्ण से संबंधित, कृष्ण की लीलाओं को नहीं करते। और ऐसा कर करके डकर डकर करके रोने लग गए। उद्धव जी ने कहा जी मैंने क्यों ऐसा कहा, सौभाग्य सचमुच में इनके समान और कौन होगा जो कृष्ण इनके यहाँ जन्म लेकर के सब लीलाएं करके आज मथुरा में चले गए। किंतु फिर सोच करके बताते नहीं, मैंने जो कुछ कहा ये तो शास्त्र के अनुकूल ही कहा, शास्त्र के अनुसार में कहा। इस तरह से उनकी बुद्धि कुछ, जब गोपियों की तो बात अलग रहे, अभी नंद बाबा का बात देख करके ही इतनी नहीं वैसे हो गए। अथवा मैंने उनके लिए गहने भेजे थे, यशोदा मैया को भेजा था किसे, नंद बाबा के द्वारा। नंद बाबा नहीं ले रहे थे, उन्होंने भेजा ले लिया। कैसे कहते जैसे मैं नहीं लूंगा, उन्होंने कहा जो मेरी मैया को दे देना। ये सोच रहे हैं जो मैया कहेगी इसकी जे ये गहनों पर अलंकारों पर स्वर्ण मुद्राओं पर तुमने हमारे बेटे को बेचाया,